कैप्टन जैन के घर पर ईशानी और जन्नत अकेली थीं, क्योंकि साद और आदम ड्यूटी पर गए हुए थे। वे दोनों सिर्फ रात को डिनर करने के लिए ही आए थे। खाने के बाद ईशानी और जन्नत दोनों बेडरूम में थीं। ईशानी बेड पर लेटे हुए रुद्राक्ष के बारे में सोच रही थी, तो वहीं जन्नत जैन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जैन से बात हो जाने के बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। जैन से बात करने के बाद जन्नत कमरे के अंदर आई तो उसने देखा ईशानी खोई हुई थी। उसने ईशानी के सामने ताली बजाते हुए कहा, किनके ख्यालों में गुम है मोहतरमा? किसी के भी नहीं, ईशानी ने जवाब दिया। फिर उसने कुछ पल रुककर जन्नत से पूछा, कैप्टन से बात हुई तुम्हारी? आज घर क्यों नहीं आए वो? वो अपने अब्बू से मिलने के लिए गए हैं, शायद आपके सिलसिले में ही बात करने के लिए गए होंगे, जन्नत ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर ईशानी के बगल में लगे दूसरे बेड पर लेट गई। वे दोनों सीलिंग को देख रही थीं, तभी अचानक ईशानी ने पूछा, क्या पहले भी वो तुम्हें इसी तरह बिना बताए चले जाते थे? हाँ, उनकी आदत ही यही है, ड्यूटी पर होते हैं तो ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं। कई बार वो अपने काम में लगे रहते हैं तो कभी हम अपने पेशेंट के साथ बिजी रहते हैं। अक्सर बाद में ही पता चलता है कि हम दोनों घर टाइम पर क्यों नहीं पहुंच गए, जन्नत ने मुस्कुराकर जवाब दिया और ईशानी की तरफ देखा। ईशानी ने भी जन्नत की तरफ देखा और फिर खोए हुए स्वर में बोली, काफ़ी रिस्की है उनका काम, क्या कभी दोनों के दिल में ये ख्याल नहीं आया कि एक दूसरे से अलग हो जाओगे? बहुत बार आता है और डर भी लगता है, लेकिन अपने डर के चलते हम एक दूसरे से मोहब्बत करना तो नहीं छोड़ सकते ना। जैन हमारी ज़िंदगी है, हाई स्कूल से जानते हैं हम उन्हें, पहली बार देखते ही समझ गए थे कि वही हमारे सोलमेट हैं, जन्नत ने जवाब दिया। जैन के बारे में बताते हुए उसके दिमाग में जैन और उसकी पहली मुलाकात चल रही थी, जो काफ़ी हसीन थी। जन्नत की बातें सुनकर ईशानी को रुद्राक्ष की याद आने लगी। उनका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, जानते थे कि कभी ना कभी अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर किस्मत के चलते दोनों अलग हो ही गए थे। रुद्राक्ष के बारे में सोचकर ईशानी की आंखें नम होने लगी थीं, तभी जन्नत ने उससे कहा, अच्छा, सब कुछ हमसे ही पूछ लेंगी या कुछ अपने बारे में भी बताएंगी? आपकी लव लाइफ भी कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही है, हमने न्यूज़ चैनल और आर्टिकल्स में आपके बारे में देखा था, यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियो थे। आपकी बहन की मौत आपके पति की बहन की वजह से हुई थी, उसके बावजूद आप दोनों के बीच में मोहब्बत है, शादी कैसे हुई? सब कुछ बहुत मुश्किल रहा होगा ना? ईशानी ने अपनी आंखों के कोनों को साफ किया और नम आंखों से हंसते हुए बोली, जितना तुम सोच भी नहीं सकती उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। ईशानी की बात सुनकर जन्नत के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो जल्दी से उठकर बैठी और ईशानी से बोली, कल संडे है और हमें वैसे भी नींद नहीं आ रही है, कल हमें शाम के वक्त ड्यूटी पर जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम देर तक सोते भी रहते हैं तो। प्लीज़ अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए ना, आप नहीं जानते पर हम आपकी बहन के फ़ैन रह चुके हैं, उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया था पर जो भी किया था वो काबिले तारीफ़ था। ईशानी ने उसकी बात पर हामी भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो शुरुआत कहाँ से करे। तभी जन्नत ने फिर से कहा, हमने न्यूज़ में देखा था कि जब ऋशानी शर्मा का वो वीडियो वायरल हुआ था तब उनके साथ वैनिटी मैन में आपके हस्बैंड ही थे, क्या पहले से आपका रिलेशन था? आपको एक बार भी शक नहीं हुआ? भाई, हम तो अगर जैन को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लें तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। जन्नत काफ़ी ज़्यादा बात करती थी और उसकी बातों से साफ था कि वो ईशानी और रुद्राक्ष के बारे में जानने के लिए कितना एक्साइटेड थी। ईशानी का मूड भी अब थोड़ा लाइट हो चुका था, उसने जन्नत से कहा, अगर तुम मुझे बताने दोगी तो मैं कुछ बताऊंगी ना, अब चुप करके बैठो और सब सुनो। इतने कम वक्त में भी ईशानी का उनके साथ एक विश्वास का रिश्ता जुड़ चुका था जिसमें वो अपने दिल की बात उनसे शेयर कर सकती थी। ये पहली बार था जब ईशानी किसी को इन सब के बारे में खुलकर बताने जा रही थी, वरना वैसे तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था सिवाय मोक्ष के। ईशानी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मेरी बहन के बारे में तुम्हें सब कुछ पता ही है, जिस वक्त पहली बार दीके केस की सुनवाई हो रही थी उस वक्त आलिया के भाई रुद्राक्ष खुराना ने मुझे किडनैप करके मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। या अल्लाह, ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसे इंसान का तो गला दबाकर मार देना चाहिए, जन्नत ने अपने दोनों हाथ मुंह पर लगाकर हैरानी जताते हुए कहा। उसका रिएक्शन देखकर ईशानी को हंसी आ गई, वो बोली, पहले तो मुझे भी यही लगता था कि ऐसे इंसान को जान से मार देना चाहिए, ऊपर से उसने मेरे साथ में काफ़ी बुरा बर्ताव भी किया था, धीरे धीरे जब उनके साथ रहने लगी तो उन्हें समझने लगी कि उन्होंने ये सब मुझे अपनी फैमिली से बचाने के लिए ही किया था। क्या सच में? तब तो वो एक बहुत अच्छे इंसान होंगे, जन्नत ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, उसकी मॉम कहती है कि उसका दिल सोने का है,
पहले मुझे हंसी आती थी जब वो ऐसा कहती थी, लेकिन बाद में मैंने उन्हें समझा तो पता चला कि उन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ सहा है, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में हजारों दर्द लिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते रहे, हमेशा ढाल बनकर रहे। मुझे भी बहुत प्रोटेक्ट किया, लेकिन जब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी तक मैं रुद्राक्ष से लड़ती रही कि वो मुझे क्यों रोकना चाहते हैं। फिर बाद में समझ आया कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से जानते हैं कि वो किस हद तक गिर सकते हैं। वो बस मेरा भला चाहते थे। और देखो ना, मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो आज यहाँ आकर फंस गई हूँ, बोलते हुए ईशानी रोने लगी, क्योंकि उसे रुद्राक्ष की पहले ही बहुत याद आ रही थी। जन्नत ईशानी के पास गई और उसे गले से लगाकर कहा, हमारे जैन का वादा पक्का वादा होता है, देखना वो आपको आपके घर तक पहुंचा कर रहेगा, चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पता है उनके अब्बू बहुत सख्त मिजाज हैं, फिर भी अगर वो आपके लिए बात करने के लिए गए हैं तो समझ लीजिए कि उनके इरादे कितने पक्के हैं। जन्नत ईशानी को सहलाने लगी ताकि उसे अच्छा महसूस हो। ईशानी ने तुरंत ही खुद को संभाला और जन्नत से अलग होकर कहा, पता है अब मुझे अपने शब्दों पर अफसोस होता है, जब मैं उसे गुस्से में कहती रहती थी कि तुम्हें तब पता चलेगा जब तुमसे तुम्हारा कोई अपना दूर होगा। उसका पता नहीं, लेकिन मैं बहुत दर्द में हूँ। मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने रुद्राक्ष को इतना सब कुछ कहा, जबकि मेरे गायब हो जाने के बाद भी उन्होंने मेरी बहन को इंसाफ दिलाया। हाँ, अपनी फैमिली और किसी और में से किसी एक को चुनना मुश्किल होता है। अगर आपके हस्बैंड ने सच का साथ दिया है तो हम यही कहेंगे कि वाकई वो एक नेक दिल इंसान है, जन्नत ने सिर हिलाकर कहा। फिर कुछ पल रुककर उसने ईशानी के आंसू साफ करते हुए कहा, और जिनके इरादे नेक होते हैं ना, उनकी मदद ऊपर वाला खुद करता है। कई बार जिंदगी में तकलीफें आ जाती हैं, पर देखिएगा आप दोनों फिर से एक साथ होंगे और वो भी खुश। ईशानी ने जन्नत की बात पर हामी भरी। देर रात तक वो दोनों बातें करते हुए ऐसे ही सो गई थी। अगली सुबह जब ईशानी और जन्नत की आंख खुली तो सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। उठने के बाद ईशानी ने जन्नत से कहा, थैंक गॉड आज तुम्हारी छुट्टी है, वरना तुम्हारे लिए सुबह सुबह ड्यूटी पर जाना मुश्किल होता। इतनी देर तक हमें बात नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या हुआ, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा और इसी बहाने आपका दिल भी हल्का हो गया। वैसे आज हम पूरे दिन फ्री हैं तो हमारे पास एक आइडिया है, जन्नत ने मुस्कुरा कर कहा। कैसा आइडिया, ईशानी ने पूछा।
जन्नत ने आईविंग करके कहा, मौज मस्ती करने का आइडिया। एक दो दिन में आप यहाँ से चली जाएंगी, क्योंकि जैन अगर अपने अब्बू से बात करने गया है तो वो उन्हें मना कर ही वापस आएगा, और फिर वो जल्द से जल्द आपको यहाँ से भेजने की सोचेंगे। जैसे दोनों देशों के हालात हैं, हमें लगता नहीं कि हम फिर कभी मिल पाएंगे। हाँ वो तो है, ईशानी ने बुझी हुई आवाज में जवाब दिया। हाँ तो हम इन्हीं बचे हुए लम्हों को यादगार बनाना चाहते हैं। आपको पता है यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मेला लगा हुआ है, क्यों ना वहाँ जाकर मस्ती करते हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, जन्नत ने अपना प्लान बताते हुए कहा। नहीं जन्नत, जैन ने बाहर जाने से सख्त मना किया है, अगर किसी ने गलती से भी मुझे पहचान लिया तो जैन की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, ईशानी ने जन्नत को आगाह करते हुए कहा। हालांकि उम्र में वो जन्नत से 3-4 साल छोटी थी, पर फिर भी काफी समझदार थी। अरे कुछ नहीं होगा, हम आपको छुपा कर लेकर जाएंगे, बस आप ज्यादा बात मत करना। ज्यादा क्या, आप बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि आपका एक्सेंट इंडियन है और आपको कोई भी पकड़ सकता है। बाकी हम आपके साथ रहेंगे तो मुश्किल नहीं आएगी, प्लीज अब हाँ कह दीजिए ना, जन्नत जिद करते हुए बोली। ईशानी अभी भी सोच रही थी तभी जन्नत लगातार उसके सामने हाथ जोड़कर प्लीज प्लीज की रट लगाए हुए थी। ईशानी ने गहरी सांस ली और फिर हाँ में सिर हिला दिया। ईशानी के हाँ कहते ही जन्नत ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, कोई आपका चेहरा तक नहीं देख पाएगा। जन्नत जल्दी से अंदर गई और ईशानी के लिए कपड़े और एक बुर्का लेकर आई। बुर्का देखकर ईशानी को थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि कोई उसका चेहरा नहीं देखने वाला था। ईशानी को तैयार करने के बाद जन्नत ने कहा, बस याद से आप किसी से कुछ मत कहिएगा। ईशानी ने उसकी बात पर हामी भरी और जन्नत के साथ मेले में जाने के लिए निकल गई। उस वक्त आदम और साद भी घर पर नहीं थे जो उन दोनों को रोक पाते, जबकि संडे होने की वजह से ज्यादातर आर्मी फैमिलीज और आर्मी वाले वहां पर मौजूद थे, और उनमें कैप्टन अहद भी था जिसे ईशानी को ढूंढने का काम सौंपा गया था। क्या लगता है, अहद ईशानी को पकड़ लेगा क्या? बाय द वे, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, इस कहानी की जर्नी काफी शानदार रही है, पहले दिन से ही आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा। चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।